युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अच्छी बात है भाई, अब तुम दोनों तो घड़े के लिए सोचते हो, अब हमारे बाद कोई राजा होगा वो निर्णय करेगा भैया, अब हम तो जाना चाहते हैं। हाथ जोड़ दिया युधिष्ठिर जी ने और कहा कि देखो भीमसेन, जिस घड़े को देने के लिए लड़ाई हुई थी वो घड़े लेने के लिए आ गई, ये उत्पात देखो सृष्टि में कितना फैल गया है, यहां देखो अब ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं रही, यहां पर कलयुग हो गया, पाप बहुत बढ़ गए हैं, देखो देखो आकाश से अमृत की वर्षा होती थी, ठंडे जल की वर्षा होती थी, वहां खून की वर्षा हो रही है, गायें बेचारे बड़े प्रेम से ढींकती थी, आज गायें भी बड़े दुखी होकर के ढींक रही है, वायु है बहुत बहता हुआ अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत कठोर वायु बह रहा है, इसलिए भाई अब यहां रहने का मन नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने कहा था कि कलयुग आएगा तो मैं नहीं रहूंगा, शायद कृष्ण से शून्य पृथ्वी तो नहीं हो गई है, ऐसा वो आपस में विचार कर रहे थे। इतने में ही रोते बिलखते अर्जुन आए, अर्जुन रोते बिलखते आकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया क्या बात हो गई, क्या सब वहां द्वारिका में प्रसन्न तो है, वसुदेव जी प्रसन्न है, देवकी प्रसन्न है और ऋदिक प्रसन्न है, अक्रूर प्रसन्न है, सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लिया, जिसके प्रति ज्यादा स्नेह रहता है उसके प्रति अनिष्ट की ज्यादा आशंका रहती है, प्रेम है वो अनिष्टाशंकी होता है, क्या पहले पहले गोविंद का नाम ले लेंगे तो मुश्किल है, औरों का ही नाम लिया, लेते 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 अंत में पूछा कि क्या वो गोविंद है, वो तो अपने वहां सुखी तो है, जो संसार के अंदर कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए आए, क्या वो गोविंद वहां पर प्रसन्न तो है, अच्छा तुम्हारे कोई शरीर में रोग तो नहीं है, कोई तुमसे अमंगल काम तो नहीं हो गया है, किसी शरणागत का त्याग तो नहीं कर दिया है, कहीं बालकों से पहले भोजन तो नहीं कर लिया है, ब्राह्मण की रक्षा में कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो गई है, क्या तुम अपने कम बलवान वालों से पराजित तो नहीं हो गए हो, इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। पूछ ले क्या बात है, तुम इतने रो क्यों रहे हो, अब भाई कोई रोता हो बिलखता हो और कोई आत्मीयता से पूछता हो कि भैया बताओ क्यों रोते हो, तो उसका रोना है और बढ़ेगा। अब ज्यों ज्यों युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं त्यों त्यों उसका रोना बढ़ता गया और बढ़ते 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 फिर उसने बड़ा धैर्य धारण करके अपने आंसुओं को पूंछ करके और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता को और पिछले दिनों को याद करते हुए कहने लगा, अर्जुन कहने लगा कि हे युधिष्ठिर क्या बतावें भैया, हे महाराज जो कुछ मेरा अपना सब कुछ था मैं आज उससे रहित हो गया हूं, एक क्षण का भी वियोग मेरे लिए जिसका सहना बड़ा कठिन होता था आज उसके बिना मैं मुर्दे के समान हो गया हूं, वो कृष्ण हमारा भाई उसके बिना आज ये हम लोग जी रहे हैं, इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या कष्ट की बात होगी। भैया हमने कृष्ण को पहले ही पहले द्रौपदी के स्वयंवर में देखा था, द्रौपदी के स्वयंवर में जब वो बलराम को मेरा परिचय करा रहे थे, हम तो जानते नहीं थे कि ये कौन है और हम वहां पर ब्राह्मण बने हुए बैठे थे, तो वो मंच था, वो मंच इस ढंग से बना हुआ था कि एक छोर पर हम थे तो दूसरे छोर के ऊपर बलराम श्री कृष्ण बैठे हुए थे, कृष्ण एक एक को यूं देख रहे थे, देखते 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 जो ही मेरे पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण ने अपना आसन बदल दिया और वो घुटनों के बल खड़े हो गए, इतना उनके मन में स्नेह पैदा हुआ, बलराम को बार बार कहने लगे देखो भैया देखो भैया वो देखो वो देखो वो देखो, मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मैंने देखा कि ये सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर कौन है, मैं उसकी ओर देखता रहा। भैया मेरी पहली दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ी है तब से लेकर आज तक मैं केवल उसी को देखता था, तेजो रिथम खलु मया भी हतश्चमत्स्य, लोग तो देखते हैं कि अर्जुन बहुत निशाने वाला था, उसने मछली का निशाना लगा करके द्रौपदी को जीता, कि नहीं नहीं मैं तो धनुष ले गया बाण ले गया, मैं तो केवल एक टक से उस कृष्ण को देख रहा था और मैंने बाण छोड़ा, वो बाण कैसे उस मछली के लगा और कैसे मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया ये मुझे मालूम नहीं है, सब कृष्ण को मालूम है। यह सन्निधौ अहम अमुक खांडवम अग्नये दाम, एक बार रक्षा की उसने हमारी कितनी बार रक्षा की है, खांडव प्रस्थ को हमने जलाकर, खांडव वन को जला करके हमने अग्नि को समर्पित किया, उस समय में इंद्र प्रकट हो गए और इंद्र ने कहा कि हे कृष्ण तुम कोई वरदान मांगो, क्या कृष्ण ने हमारे लिए वरदान मांगा है, कृष्ण ने इंद्र से मांगा है, जो इंद्र भगवान की कृपा को मांगता रहता है, उस इंद्र के सामने कृष्ण ने यही बात कही कि अरे इंद्र, तुम यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरे को एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरी अर्जुन की उम्र भर मित्रता निभ जाए, ये वरदान मांगा। आज उस कृष्ण के बिना मैं रहित हो गया हूं। और देखिए, ये आपके भीमसेन है, ये जरासंध को मार सकते थे, कितने कितने राजाओं को कैद कर रखा था, उन सब की बलि देने के लिए तैयार थे, भूतनाथ भैरव को बलि देने के लिए उन राजाओं को कैद कर दिया था, इतना उसमें बल था। गजायुत सत्ववीर 10,000 हाथियों का उसमें बल था, लेकिन वो उसी जरासंध के दो टुकड़े करके फेंक देने वाले भीमसेन में इतना बल कहां से आया? ये बल उसी कृष्ण का ही था और किसी का नहीं था। और जब आपका राजसूय यज्ञ हुआ और द्रौपदी के वो केश जो कि अभी अभिषेक के जल से गीले थे, उन गीले गीले केशों को पकड़ करके जब भरी सभा के अंदर दुशासन घसीट करके लाया, और ला करके जब द्रौपदी ने जब वो शाप दिया था तो किसके बल पर दिया था? वो एक कृष्ण के बल पर दिया था। आप सब कृष्ण के एहसानों से दबे हुए हो। वनवास के अंदर दुर्वासा ऋषि पहुंचे और कहा कि हमको साका नशिष्टम उपयुज, हमको भोजन करना है। अब वो द्रौपदी तो भोजन कर चुकी, अब खिलाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो दौड़े दौड़े कृष्ण आए कि द्रौपदी मुझे भूख लगी है। अब दुर्वासा को तो खिलाने के लिए था नहीं, भगवान को कहां खिलावे भाई? दुर्वासा के पास तो 10,000 थे, भगवान के पास तो सारा संसार पेट में बैठा हुआ। क्या भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे कुछ खिलाओ, मैं भूखा हूं, बहुत देर से भूखा हूं और बहुत दूर से आ रहा हूं? द्रौपदी ने कहा कि अरे भाई कृष्ण क्या करते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे कुछ तुम्हारी बटली में देखो, कुछ तो होगा। क्या? कुछ भी नहीं, सब खाली। अरे कुछ है, देखा एक थोड़ा सा साग का पत्ता था, अरे यही लाओ, जल्दी लाओ, दुर्वासा आ न जाए। वो जो ही पत्ता लेकर के और उन्होंने तृप्ति का अनुभव किया, दुर्वासा जी तृप्त हो गए। दुर्वासा जी वापिस आए नहीं, सीधे 9, 2, 11 हो गए। ये सब काम श्री कृष्ण ने किया था। सेन्द्रा श्रिता यद अनुभावित माज मीढ़ तेनाह मध्य मुषित पुरुषेण भूमना तत्रैव मे विरह तो भुज दंड युग्मम। एक मैं अकेला गया था उत्तरा के उस गौओं को लाने के लिए। मैं एक उत्तर देश की रक्षा के लिए गया था, गौओं की रक्षा के लिए गया था। सारी सेना को मैंने मूर्छित कर दिया था, तो वहां से मैंने बहुत सा धन लाया हूं, बहुत सा मैंने वहां पर गोधन लाकर के इकट्ठा किया है, उनकी मणियों को मैंने इकट्ठा किया था। ये सब क्या था? विराट के वहां पर रह करके जो मैंने उनके ऊपर विजय प्राप्त की, केवल कृष्ण का अनुग्रह था। और तो बात छोड़ो, जब युद्ध के अंदर हमारी दोनों सेनाएं लड़ रही थी, उस समय में बताओ तुम्हारे पास क्या बल था और मेरे पास क्या बल था? ये भीष्म और द्रोण और कर्ण, इनके सामने किसी की दाल नहीं गल सकती थी। तो गुरु भीष्म कर्ण नपत्री त्रिगर्त सलसैन दव बाल्लिक आद्यही, इनके सामने खड़ा रहना किसी के बस की बात थी क्या? लेकिन वे सब हार गए और आज हम जीते हैं, ये केवल एक कृष्ण की कृपा का प्रभाव है। परंतु हमारी बुद्धि मारी गई, हमने उसको सूत बनाया। और वो जब कभी भी मिलते थे तो हम के हे कृष्ण ऐसे ऐसे हम बोलते थे, और वो हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, हे कुरुनंदन, ऐसा वो प्यार से बोलते थे कि आज उनकी वाणी सुने बिना हमको चैन नहीं मिल रहा है। क्या बताऊं, एक साथ सोते थे, खाते थे, भोजन करते थे, साथ साथ हम सोते थे, एक दूसरे के हम हरदम टक्कर लगाते रहते थे, चलते चलते चंचलता करते थे। लेकिन मेरे अपराधों को जैसे एक मित्र सहता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को सहता है, सब कुछ इस दुष्ट की करतूतों को उन्होंने सहा है और मुझे क्षमा किया है। क्या बताऊं, उस कृष्ण से रहित अब हमारे जीने का मन नहीं करता है। इससे बड़ा आपके लिए और मेरे लिए रोने का और कौन सा दिन आएगा? उस कृष्ण के बिना हम रो रहे हैं आज। आपने पूछा क्यों रो रहे हो, हमारे रोने का ये कारण है। मैं द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर आ रहा था, ये धनुष भी वही है, रथ भी वही है, सब कुछ वही है, हमको तो गोपों ने लूट लिया बीच में ही। कारण क्या हुआ कि सारा बल तो उसी का ही काम कर रहा था, अब उसका बल नहीं मिलेगा तो ये दशा हमारी होगी। देखो महाराज, प्रभास क्षेत्र में सब गए थे, वहां जाने क्या उनके आपस में सूझी, वारुणी मदिरा पी ली, लड़ झगड़ करके आपस में लड़ करके सब खत्म हो गए। ये सब कुछ वहां हुआ है, अब हमारा मन यहां नहीं रहता है। उन्होंने तो पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, लेकिन हमारी छाती बहुत भारी होगी कृष्ण के बिना। अब क्या करना चाहिए, आप ही विचार कीजिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने बात सुनी, युधिष्ठिर जी के टाप टाप आंसू आने लग गए। भीमसेन भी दुखी हो गए, कुंती भी वहां आ गई, कुंती भी बहुत दुखी हो गई। भगवान ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश को सुना, उस उपदेश को याद किया अर्जुन ने गीता का, और याद करके बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और प्रथा ने जब ये सुना कि भाई कृष्ण नहीं रहा है, मेरा भतीजा नहीं रहा है, तो प्रथा ने प्रेम के अंदर अपना वही शरीर त्याग दिया। देखा जाए तो भगवान ने कंटकम कंटके नहीं वह द्वयम चापिशतु समम, भगवान तो सम है, कांटे के द्वारा कांटे को निकाला जाता है। पृथ्वी का भार उन्होंने हल्का कर दिया था लड़ झगड़ करके, क्योंकि उसी से ही पृथ्वी का भार बढ़ा था। तो जिस प्रकार से पृथ्वी का भार हल्का हो सकता था वो सब काम किया उन्होंने। फिर पृथ्वी को छोड़ के भगवान चले गए थे। ये कलयुग आगे कलयुग बढ़ने लग गया। युधिष्ठिर जी ने देखा कि अब यहां पर बहुत लोभ छा गया, कपट छा गया, हिंसा है, बात बात में झूठ बोलते हैं, माँ बेटे से छिपाती है, बेटा माँ से छिपाता है, बाप स्त्री बाप बेटे से छिपाता है, बेटा बाप से छिपाता है, भाई भाई से छिपाता है, पति पत्नी से छिपाते हैं, ये सब यहाँ अधर्म का प्रवाह चल रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और अपना और भगवान के पौत्र को वज्र को उन्होंने मथुरा का राजा बना दिया और स्वयं वहां से राज हस्तिनापुर से निकल गए। कहीं पर भी उनकी ममता नहीं रही, उन्होंने वाणी को मन में लीन कर दिया। देखो भागवत में ये बात बहुत मिलेगी कि अमुक में लीन कर दिया, अमुक को अमुक में लीन कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई जैसे पानी के अंदर पानी मिला देते हैं, पानी में दूध मिला देते हैं, ऐसे लीन कर दिया, यूं नहीं है। ये लीन होने का मतलब विचारों के द्वारा समझना है कि ये अमुक के साथ अभिन्न है। माने वाणी को मन में लीन कर दिया, माने वाणी का अधिष्ठान मन है, और मन को प्राणों के अंदर लीन कर दिया, माने मन के अंदर शक्ति प्राणों से आती है, प्राणों को प्राण को अपान में कर दिया, अपान को मृत्यु में कर दिया, इनको पांच भूतों में लीन कर दिया, पांच भूतों को तीनों गुणों में लीन कर दिया, तीनों गुणों को एक प्रकृति में लीन कर दिया, एक प्रकृति को परमात्मा में लीन कर दिया। अर्थात ये एक दूसरे के अंदर लीन होते हैं, एक परमात्मा की सत्ता है, ऐसा विचार करना है, इसी को लीन करना बोलते हैं। अब उन्होंने चीर वस्त्र पहन लिए और अपनी वाणी का संयम कर लिए और अपने जड़ और उन्मत्त की तरह से भी रहने लगे, केस उनके बढ़े हुए हैं, उत्तराखंड की ओर चले गए और उनके साथ साथ में युधिष्ठिर जी के साथ साथ में भाई लोग भी चले गए। भगवान का मन से उन्होंने ध्यान किया और उत्तराखंड में जाते 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 भगवान नारायण में मन लगा करके भगवान नारायण को ही प्राप्त हो गए और अंत में भगवान को धाम को प्राप्त करके महान आनंद को प्राप्त हो गए। विदुर जी महाराज प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपना शरीर शांत कर लिया और द्रौपदी ने भगवान वासुदेव में मन लगा करके फिर भगवान को वो भी प्राप्त हो गई। ये पांडवों के महाप्रयाण की पावन कथा है। इसको जो सुनता है उसको अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
भगवत कृपा से प्राप्त इस पावन पुण्य वेला में चल रहे भागवत प्रसंग के अंतर्गत अधिकारी निरूपण नामक प्रथम स्कंद की कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत के अधिकारी होने के लिए भागवतकार ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई शर्त नहीं रखी, इसीलिए श्रीमद् भागवत अनुबंध चतुष्टय की सीमाओं से पार हुआ एक सर्वव्यापक सार्वभौम महापुराण है। इतना सब होते हुए भी प्रथम स्कंद को अधिकारी निरूपण स्कंद कहा जाता है। इसका तात्पर्य बताया भी था कि जो संसार से उद्विग्न हुआ हुआ है, जिसे संसार के भोग सदा दुखी बनाते हैं, जो संसार के भोगों में रमना नहीं चाहता, रचना नहीं चाहता, संसार से जो ऊब गया है वो भागवत का अधिकारी है। ऐसी अधिकारिता में मानव मात्र सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो संसार में यहां जन्म लिया और यहां उसने संसार के भोगों के कारण महान आनंद को सुख को प्राप्त किया हो, ऐसी आज तक किसी की दशा नहीं हुई और न ही ऐसी दशा भविष्य में भी होने वाली है। इस स्थिति से हम यह जान सकते हैं कि भागवत के वे सभी अधिकारी हैं और उसी का बड़ा मार्मिक निरूपण वेदव्यास जी महाराज की पावन लेखनी से हुआ है कि प्रथम स्कंद के जितने पात्र हैं, चाहे वे स्वयं वेदव्यास भी क्यों न हो, वे भी खिन्न मना है। स्वयं नारद जी महाराज ने भी अपना चरित्र बताया है तो वो भी चरित्र लाकर रखा जिसमें उन्होंने बड़ा कष्ट पाया है। महाराज युधिष्ठिर का प्रसंग चल रहा था, युद्ध में वो जीत गए, राजलक्ष्मी उनको मिल गई, परंतु उस वैभव का निरूपण प्रथम स्कंद में नहीं है बल्कि उस राज्य के त्याग का विशद वर्णन किया है। ज्ञान संपन्न विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को जिन कड़े शब्दों में फटकारते हुए समझाते हैं उससे भी भागवत के पहले स्कंद की महिमा और विचित्र रूप से प्रकट हो जाती है। उसी क्रम में राजा परीक्षित के जन्म के विषय में बात चली। हां, भगवान भी जब द्वारिका में पधारे हैं तो भगवान को भी कई प्रकार से उपालंब सुनने पड़े हैं द्वारिका वासियों के मुख से। तो ये सब बातें हमको एक ही बात की ओर ले जाती हैं कि श्रीमद् भागवत का हमको अधिकारी होना चाहिए। कल के समापन प्रसंग में पांडवों के महाप्रयाण की कथा चली। चूंकि शौनक जी महाराज ने पहले ही प्रार्थना कर दी थी कि महाराज भागवत के वक्ता और श्रोता के विषय में आप समझा रहे थे तो हमको भागवत के श्रोता के विषय में कुछ विशेष जानकारी चाहिए। वक्ता के विषय में इतनी जानकारी सुनने की इच्छा नहीं थी जितने श्रोता के विषय में थी, क्योंकि श्रोता का मिलना दुर्लभ है। भागवत के वक्ता के विषय में भगवान का एक विलक्षण संकल्प था जो कल बताया कि भागवत सुनने के बाद जब सुखदेव जी महाराज को भागवत तत्व का ज्ञान हुआ तो स्वयं भगवान ने प्रकट होकर कहा कि देखो सुखदेव, इस संसार का बहुत बड़ा हित करने के लिए तुमको एक बार परीक्षित को 7 दिन के लिए समय निकालना होगा और इस महापुराण को तुम्हें कहना होगा। ऋषि मुनियों के बीच में जब तुम एक बार उस कथा को कह दोगे तो संसार में एक कल्याण की बड़ी स्वच्छ परंपरा चल पड़ेगी। तो भगवान के वचनों से वे प्रतिबद्ध थे, परंतु राजा परीक्षित का भागवत के सुनने के लिए उत्सुक होना ये उन शौनकादि ऋषियों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। उन ऋषियों ने बड़े स्पष्ट रूप से ये निवेदन भी कर दिया कि एक तो राजा परीक्षित है, वो सार्वभौम सम्राट हैं, संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, कितना बड़ा वैभव उन्हें मिला, कितने बड़े भोग मिले, बहुत बड़े बड़े सम्राट सामंत उनके चरणों में आकर मुकुटमणियां घिसते थे और तरह तरह के उपहार देते थे और युवा उसकी अवस्था थी। इतना सब अनुकूल वातावरण होकर के भी भागवत सुनने के लिए वो क्यों लालायित हुआ, प्रायोपवेश के लिए क्यों बैठा, यह ऋषियों का कोई सामान्य जिज्ञासात्मक प्रश्न नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो सूत जी ने उस प्रश्नों की चोट को अच्छी तरह से समझा तो अब वे सूत जी महाराज परीक्षित का जीवन बता रहे हैं। परीक्षित का 2 प्रकार का जीवन मिलेगा, एक परीक्षित का पूर्वार्ध जीवन और एक परीक्षित का उत्तरार्ध जीवन। प्रारंभ में पूर्वार्ध का निरूपण करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडवों के महाप्रयाण के समय महाराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया
और राजा परीक्षित भी ब्राह्मणों को गुरु बनाकर उनकी शिक्षा को लेते हुए प्रजा का पालन किया। राजा परीक्षित का विवाह हुआ, उनके चार लड़के हो गए जन्मेजय, जिनमें सबसे बड़े थे। फिर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ किए। ऐसा विलक्षण यज्ञ किया कि देवता भी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए इतना ही नहीं, देवा यत्राक्ष गोचरा, स्वयं देवताओं ने आकर उस यज्ञ के अंदर प्रत्यक्ष सबको दर्शन दिए थे। एक बार वो दिग्विजय के लिए निकला तो उन्होंने कली का निग्रह कर लिया, कली को पकड़ लिया। वास्तव में कली ने एक बहुत बड़ा अपराध भी तो किया था, एक गाय को और एक बैल को वो बुरी तरह से मार रहा था, पीट रहा था, इस प्रकार से उसका निग्रह किया। माने सूत जी महाराज जिस ढंग से कथा कह रहे हैं तो देखो, असली वक्ता वही है जो श्रोताओं के भाव को टटोल टटोल करके चलता हो, और असली श्रोता भी वही है कि वक्ता के अंदर छिपी हुई बातों को जो उगलवा दे। ये सब बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन प्रसंग क्रम से ऐसी बात प्रतीत होती है। तो सौनक जी ने प्रार्थना की कि महाराज आप कथा को इतना संक्षेप में क्यों कह रहे हैं, आपको यहां किस बात का संकोच हो रहा है, आप बताइए कि राजा ने, माने राजा का रूप बनाए हुए उस कलयुग ने गाय और बैल को क्यों मारा, वो मारने का उसका अभिप्राय क्या था। एक बात है, आप जो कुछ भी हमारे प्रश्न का उत्तर देवे, यदि वो श्री कृष्ण कथा से संबंधित है प्रसंग, तब तो आप सुनाना, अन्यथा हमारे प्रश्न को आप बेकार करके टाल देना, हमारे कोई विचार नहीं है। यदि कृष्ण कथा स्वयं, आप ये मत सोचना कि यहां हम लोग कथा सुनाने जा रहे हैं, कोई इनकी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी बात बाकी रह जाएगी, हम बहुत व्यवस्था करके यहां कथा सुनने का प्रोग्राम बनाए हैं। क्या बात है, क्या व्यवस्था की है कि इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि, हमने भगवान यमराज को, मृत्यु को यहां पर बुला लिया है, वो स्वयं आज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये मृत्यु सबको मार रही है, परंतु मृत्यु को भी मारने वाले कोई न कोई है, जरा मृत्यु का भी कल्याण होवे इस भागवत को सुनने के कारण, तो हमने उसको भी यहां पर बैठा लिया है, और मृत्यु से ये वादा किया है कि जब तक हम लोग यहां भागवत सुन रहे हैं, हमारे श्रोताओं में किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। न कश्चित मृते तावत, और क्यों नहीं होनी चाहिए कि हरि लीला अमृतम बचह, भगवान की लीला क्या है, ये साक्षात अमृत है, इस अमृत को पिए बिना किसी को तुम यहां से उठाना नहीं। तो महाराज समय तो हमारा निकलेगा ही, आप जितना कथा में संकोच करोगे समय उधर पीछे बचेगा, और वो समय ज्यादा से ज्यादा खाने में, पीने में, सोने में और बातचीत में व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आप कथा को विस्तार के साथ सुनाओ कि उस कलयुग का कैसे निग्रह किया राजा परीक्षित ने, कहां उनका मिलना हुआ, और उसका निग्रह करके राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया। ये सब बातें जहां तक हम समझ रहे हैं कृष्ण कथा से संबंधित है, अतः आप इनको विस्तार के साथ सुनाइए।
पर आगे सूत जी बता रहे हैं कि एक बार राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में गए, वहां लोगों से सुना कि आपके राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। राजा परीक्षित को ये बात अच्छी नहीं लगी, तत्काल अपने काले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ गए, शस्त्र हाथ में लिए और चल पड़े दिग्विजय के लिए। भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, उत्तर वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष, ये सब पांचवें स्कंद में आएंगे। उन सब वर्षों को पार करते करते बहुत दूर चले गए। जहां जहां महाराज परीक्षित गए थे वहां वहां की प्रजा ने चारों तरफ से घेर करके परीक्षित के सामने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विचित्र महिमा सुनाई। भगवान केशव के प्रति ऐसी प्रजाजनों की भक्ति देकर स्वयं परीक्षित बड़े प्रफुल्लित हो गए। प्रीति उज्जृंभित लोचन, उनके आंखों में जल आ गया,
और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने प्रजाजनों को धन दिया, वस्त्र दिया। और प्रजाजन भी कहने लगे, महाराज परीक्षित, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पूर्वजों के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सारथी बने, सूत बने, दूत बने और उनके साथ मित्रता निभाए। ऐसे आपके वंश में बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। इस प्रकार से वे बात सुनते सुनते गए। आगे राजा परीक्षित ने एक बड़ा विलक्षण आश्चर्य देखा कि वहां एक बैल है जिसके तीन पैर नहीं है और एक गाय है जो रो रही है। रोती हुई गाय को देखकर वह जो बैल है, वो बैल बड़ी नम्रता से पूछ रहा है कि हे माँ, क्या बात है, तुम क्यों म्लान मुख वाली हो, तुम्हारे हृदय में कोई दुख छिपा हुआ है जिसको तुम आंसुओं से प्रकट कर रही हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो। अहो, क्या तुम मेरे तीन पैरों को कटा हुआ देख करके रो रही हो, अथवा तुमने अपने पर विचार कर लिया कि अब इस पृथ्वी के ऊपर शूद्रों का राज्य होगा, अथवा उन देवताओं के लिए आप विचार कर रही हो कि जिनको अब यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, अथवा इस पृथ्वी पर अब स्त्रियों की कोई रक्षा करने वाला नहीं, बाल बच्चों की कोई रक्षा करने वाला नहीं, इनको अनाथ देकर रो रही हो, क्या बात है, ये अब क्षत्रिय कुल ब्राह्मणों का आदर करने वाला नहीं रहा, इस बात से दुखी हो, आहोस्वित ब्राह्मणों की दुर्दशा देखकर दुखी हो। नहीं नहीं, अब मैं पहचान पाया हूं कि भूरि भरावतार कृतावतारस्य, आपके भार को दूर करने के लिए जिन्होंने अवतार धारण किया था, उन गोविंद के चरण तुम्हारे पर नहीं है, इस कारण से तुम दुखी हो। यही दुख का कारण हो सकता है, और तो क्या होगा। माँ, तुम मुझे अपने दुख का कारण खुल करके बताओ। ऐसे माँ बेटों में बातें हो रही थी, तो जब ये बैल जो कि धर्म था और ये गाय जो कि पृथ्वी है, पृथ्वी का और धर्म का बड़ा गहरा संबंध है, पृथ्वी पर ही धर्म हो सकते हैं और जगह धर्म करना मुश्किल है, तो पृथ्वी पर ही जब धर्म के तीन पैर कटे हुए हैं तो पृथ्वी का रोना तो स्वाभाविक था ही। पृथ्वी ने कहा, बेटा तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, चार पैर तुम्हारे थे और तीन पैर कट गए, एक पैर के ऊपर खड़े हो तो मेरे लिए कितने कष्ट की बात है। और दूसरी बात ये भी सही है कि जिनमें ये 39 गुण नित्य निरंतर विराजमान है, वे भगवान हमको छोड़कर चले गए। सत्य, शौच, दया, पवित्रता, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, साम्य आदि भगवान में नित्य गुण है, वे भगवान जब हमको छोड़कर चले गए तो हमारे यहां हंसने का दिन कहां रहा। मैं अपने लिए भी सोचती हूं, तुम्हारे लिए भी सोच कर रही हूं। नहीं नहीं, मेरे द्वारा पितरों का भी तर्पण होता है तो मैं पितरों के लिए विचार कर रही हूं, देवताओं के लिए विचार कर रही हूं, ऋषियों के लिए मुझे सोच हो रहा है, सर्वान वर्णास तथा श्रमान, मैं सब वर्ण वालों के लिए, आश्रम वालों के लिए चिंतित हो रही हूं। देखो धर्म, ब्रह्मा आदि जिस लक्ष्मी के लिए हरदम आकांक्षा करते हैं, लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि तरह तरह से लालायित रहते हैं, वो लक्ष्मी ब्रह्मा आदि को प्राप्त न होकर जिनके चरणों को कभी छोड़ती नहीं है, जिनके चरणों में ध्वजा लगी हुई है, जो का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, वे चरण अब मेरे ऊपर नहीं रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या कष्ट की बात होगी। यो वै ममाति भरमा सुरवंश राज्ञाम अक्षौहिणी शतमपा नुददात्म तंत्र है, वे सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा मेरे पर भार बनी हुई जितनी अक्षौहिणी सेना थी उन सब का उन्होंने नाश करवाया, ये सब कुछ अवतार मेरे लिए किया, उस पुरुषोत्तम के विरह में अब मैं कैसे सुखी रह सकती हूं। इस प्रकार से ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, पृथ्वी और धर्म। इतने में ही राजा परीक्षित ने वहां बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सरस्वती नदी का किनारा था और उस सरस्वती नदी के प्राचीन प्राप्त है पूर्व दिशा की ओर की बात थी। तो ये आपस में बात कर रहे थे और इन बात करने वाले माँ बेटों को अर्थात धर्म और पृथ्वी को एक राजा का रूप बनाकर आया हुआ कलयुग हाथ में डंडा लेकर बुरी तरह से कभी गाय पर और कभी बैल पर डंडा बरसा रहा था। अनाथवत हन्यमानम, जैसे मानो इनका कोई स्वामी है ही नहीं, इस प्रकार से बड़ी क्रूरता से वो मार रहा था। और वो बेचारा बैल एक पैर पर खड़ा हुआ वो बहुत ही कांपने लग गया, और पृथ्वी थी वो दुर्दशा देख करके अपने पर होने वाले अत्याचार को देख करके वो भी कांपने लग गई। गाय भी, अब गाय भी रोवे और बछड़ा भी रोवे, ऐसी कारुणिक स्थिति देख करके परीक्षित से रहा नहीं गया। वह रथ में बैठा भाई अपने धनुष को चढ़ाया और बड़े मेघ के समान गंभीर वाणी में फटकारते हुए कहा कि ए दुष्ट, कौन हो तुम राजा का रूप बनाकर गाय और बैल को मारने चले हो? शौचियों सी तुम बड़े शोचनीय हो, तुम्हारी कितनी दुर्दशा होगी। प्रहरन वदमर रसी, अब मेरे शस्त्रों के प्रहार से तुम्हारा वध होना चाहिए, तुम वध्य हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। और ये जो मृणाल के समान सफेद रंग वाला है, जिसके तीन पैर नहीं है, ये कौन है? कोई आप देवता है या कोई वह साक्षात बैल है? कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पाया हूं, आप अपना परिचय दीजिए। और हे माता गौ, आपको ये क्यों मार रहा है? कोई बात नहीं, जब तक मेरी दृष्टि नहीं पड़ी तब तक इसने आपको दंड दिया। मा रोदी रंब भद्रंते, अब आप किसी प्रकार से चिंता न करें, दुष्टों का नियामक मैं जो यहां खड़ा हूं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हां हे बैल, तुम बताओ तुम्हारे तीन पैर किसने काट डाले? ध्यान से सुनना हो, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तुम्हारे तीन पैर किसने काटे हैं, जरा उनका नाम बताओ। आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम, देखो मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं, आपका जो स्वरूप बिगाड़ा है और वो भी अर्जुन के वंश के अंदर उत्पन्न होने वाले शासकों के जीते जी ऐसा किया है, तो ये पहला कलंक तो हमारा है। पहले तो पैर हमारे टूटे हैं, उसके बाद तुम्हारे टूटे हैं। प्राणियों को मारने का एक दुस्साहस किसने किया है? खुल करके बताओ, निर्भय होकर बताओ, तुम्हारा ये अपराध किसने किया है? ध्यान से सुने, अब धर्म का उत्तर कितना विचित्र है। धर्म ने कहा कि राजन, आप युधिष्ठिर के वंश में हैं, आप पांडु वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आपको दुखी प्राणियों के वचन हैं, वो आपको दुखी कर देते हैं। इतनी दया करते हैं आप दुखी आदमियों पर, इसी कारण से आप हमसे दुख का कारण पूछ रहे हैं। परंतु क्या बता मे राजन, आज तक हम ये जान नहीं सके कि हमारे को दुख देने वाला कौन है। ये बड़ी सार की बात कह रहे हैं, कारण कि वाक्य भेद विमोहिता, हमने शास्त्रों की तरह तरह की बातें सुनी है। कोई कहते हैं कि भाई एक आत्म सत्ता के अलावा दूसरे की सत्ता है ही नहीं, तो दूसरा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर हमको दुख कौन देगा? केचिद विकल्प वसना, विकल्प वसना माने विकल्प के ऊपर जिन्होंने वस्त्र डाल दिया है, विकल्प को जिन्होंने आच्छादित कर दिया है, अर्थात अद्वैतवादियों के मत में एक परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, तो परमात्मा के अलावा दूसरा है ही कौन? तो वहां ये दुख देना और दुख पाना और दुख का भोगता और दुख का प्रदाता, ये इतना भेद है ही नहीं, तो कैसे बतावे कि हमको किसने दुख दिया है? दूसरे मीमांसकों ने बताया है कि भाई कर्म है वही सबसे बड़ा दुख देने वाला है, क्यों? वो कर्मवादी है। मीमांसाओं में, मीमांसा माने विचार करना, मीमांसा में दो प्रकार की, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा है वो जड़वादी है, कर्मवादी है, और उत्तर मीमांसा है ये अद्वैत सिद्धांत वेदांत है, ये उत्तर मीमांसा है। देखो इस पूर्व मीमांसा की भागवत में जगह जगह खंडना की गई है, बड़े तरकीब से की गई है। एकादश स्कंद में तो पूर्व पक्ष उठा करके पूर्व मीमांसा का मत रखा जाएगा और फिर उसका खंडन भी वहां पर मिल जाएगा। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई स्वभाव है, स्वभाव के कारण से मनुष्य दुख पाता है, दैवम अन्य और कहते हैं कि भाई भाग्य कारण, भाग्य के कारण से दुख आता है। तो हम कैसे बतावें कि हमको दुख देने वाला कौन है, हम निर्णय नहीं कर पाए हैं। अप्रतर्क्यात अनिर्देश्यात, न तो हम कोई तर्क से समझ सकते हैं और न कोई हम किसी निर्देश से और किसी उपाय से समझ सकते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। और अत्रानुरूपम राजर्षे विमृशय स्वमनीषया, आप अपनी बुद्धि से ही सोचिए कि हमारे दुख का कारण कौन है। अब ये परीक्षित के लिए ही सोचने की बात कह दी, कितनी विचित्र बात कही है धर्म ने। और धर्म ही जब धर्म की बात नहीं कहेगा तो फिर वो धर्म ही क्या रहा। जब राजा परीक्षित के सामने आए कि ओहो दुख देने वाला कौन हो सकता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और ये बोलने वाला बैल है तो ये सामान्य बैल नहीं है, राजा परीक्षित समझ गए और वे कहने लगे कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, तुम धर्म को जानने वाले और धर्म को बता रहे हो, अतः बैल का रूप धारण करने वाले तुम साक्षात धर्म हो। क्यों कि तुमने कितनी बड़ी चतुराई से अपनी बात कह दी। यद अधर्म कृत स्थानम सूचक भी तद भवित, यदि तुम अधर्म को बताते, अधर्म का किसने पालन किया है, आचरण किया है, ऐसी चुगली तुम मेरे सामने करते तो तुम धर्म कहां से रहते, क्योंकि वो एक अधर्म होता। किसी की चुगली करना है ये अधर्म है, किसी की निंदा करना ये अधर्म है, किसी की कमी बताना ये अधर्म है। तो तुमने ये नहीं बताया कि इस कलयुग ने हमको मारा है, इसका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि इसकी बात कहने वाला खुद अधर्म न कर ले, अतः सूचकस्या भी तद भवेत। इसलिए भाई मैं जान गया हूं कि तुम्हारे चार चरण हैं, एक तपस्या से तुम्हारा चरण बनता है, एक पवित्रता से बनता है, एक दया से बनता है और एक सत्य से बनता है। ये चार चरणों पर तुम खड़े रहते हो, लेकिन ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों त्यों तुम्हारे चरणों में ढिलाई आने लगती है। ये घमंड होता है उससे तो तपस्या का जो चरण है वो ढीला हो जाता है। और संग है, आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण से पवित्रता नष्ट हो जाती है। शरीर में इतनी ज्यादा आसक्ति है कि शरीर के लिए क्या पवित्रता की बात है, ये पवित्रता की बात नहीं रहती, सुंदर कैसे लगना चाहिए ये बात देखी जाती। तो आसक्ति के कारण से पवित्रता नष्ट हो गई और मद के कारण से दया भाव नष्ट हो गया। ये अधर्म के तीन अंश हैं, इस कारण से तीनों चीजें समाप्त हो गई। अब एक सत्य रूप चरण रहा। सत्य क्या है कि सत्य का कभी नाश नहीं होता, नाश हो जाए तो वो सत्य क्या है, नहीं तो अधर्म तो सत्य को भी नष्ट कर देता, परंतु सत्य नष्ट होता नहीं है। देखो चोर है, वो वाणी से तो कह देगा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन दिल से नहीं कहेगा कि मैं चोर नहीं हूं, मन में तो यही समझेगा कि ये चोरी मैंने की है। पकड़ा जाएगा तब भी कहेगा साहब मैंने नहीं की है, मैंने नहीं की, वाणी से कह देगा, कैसे भी कह देगा, परंतु सत्य इतना ठोस होता है कि चोर के दिल से भी ये बात होगी कि नहीं ये चोरी मेरे द्वारा की हुई है। ऊपर से कितना ही झूठ बोल दे तो झूठ से सत्य का नाश नहीं होता है, बल्कि इन घमंड से तपस्या का, आसक्ति से पवित्रता का और मद से दया का नाश हो सकता है। तो राजा कह रहे हैं कि आपके तीन चरण इस कलयुग के द्वारा नष्ट हुए हैं और आपकी दुर्दशा देखकर और पृथ्वी पर अब पापाचारों का भार देख करके ये गाय है जो पृथ्वी बनी हुई है ये विचार कर रही है, इसलिए अब आप दोनों ही चिंता मत करो और मैं अब इस कलयुग का निग्रह करता हूं। ऐसा कहकर के उस समय में अपने हाथ में तीखी तलवार लेकर वे कलयुग के ऊपर झपटे और जो ही कलयुग के ऊपर राजा परीक्षित यूं प्रहार करने लगे, इतने में ही कलयुग तो भाई अब कलयुग है, उसी समय में देखा कि और तो कोई उपाय नहीं है, भय से कांपता हुआ वो परीक्षित के चरणों में गिर गया। अब वो चरणों में गिर करके कहने लगा कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मुझे मत मारिए। अब ये कलयुग की शरणागति कैसी विचित्र है भाई, शरण में भी आएगा और जिस बात को लेकर के शरण में आएगा उसका पालन भी नहीं करेगा। अब राजा परीक्षित ने कहा अच्छी बात है, जब तुम शरण में आ गए हो तो भाई हमारे यहां वंश में आज तक कोई ऐसे पूर्वजों में हुए नहीं कि जो शरणागत की रक्षा न किए हुए हो। अब एक बात हमारी मान लो तुम यहां से चले जाओ, हमारा क्षेत्र छोड़ दो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सदा यज्ञ होते हैं, भगवान की कथाएं होती है, यहां सदाचारी लोग रहते हैं। यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञा, यज्ञ को जानने वाले बड़े बड़े पुरुष विद्वान पुरुष हैं यहाँ, और यज्ञेश्वर भगवान की वे पूजा किया करते हैं, अतः आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म को तुम मित्र बनाए हुए हो तो तुम रहोगे वहाँ अधर्म रहेगा, और जहाँ अधर्म रहेगा वहाँ पर लोभ रहेगा, झूठ रहेगा, चोरी रहेगी, दुष्टता रहेगी, माया रहेगी, कलह रहेगा, दंभ रहेगा, पाखंड रहेगा, ये सब तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और किसी जाकर दूसरे क्षेत्र में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज दूसरे क्षेत्र में कहाँ रहूं, आप मुझे बता दो कि अमुक अमुक जगह रहो, वहां पर मैं रहूंगा। तो अच्छा ऐसा करो कि तुम चार जगह तुम रहो, एक तो जो मदिरा है उसमें जाकर तुम निवास करो, एक जुआ है वहां पर जाकर तुम निवास करो, एक स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो परस्पर में आकर्षण होता है उस आकर्षण में जाकर तुम रहो, और एक जहां हिंसा है वहां पर जाकर तुम रहो, जहां हिंसा होती है वहां तुम जाकर बैठ जाओ, जहां काम है वहां जाकर बैठ जाओ, जहां पान है वहां जाकर बैठ जाओ, और जहां जुआ खेलते हैं वहां जाकर बैठ जाओ। चार जगह हमने दे दी, चारों जगह जाकर बैठ जाओ। जब इस प्रकार से बात कही तो कलयुग ने कहा, महाराज थोड़ी और जगह दे मुझे कि जाओ तुमको हम सोना देते हैं, सोने में जाकर बैठ जाओ। अब वो सोने में भी जाकर बैठ गया। ध्यान देना, ये आश्रय तो दे दिए परीक्षित को, अब परीक्षित को लेने के देने पड़ जाएंगे। सोने में भी जाकर के आश्रय दे दिया, सोने में आश्रय दे दिया तो क्या हुआ कि झूठ कपट तब से चालू हो गया, और ये जो द्यूत है जुआ है इसमें झूठ हो गया, सोने में आने से तो बैर बढ़ गया। सोने में कलयुग का निवास रहना, कलयुग का निवास हुआ तो बैर बढ़ गया, जुए के अंदर कलयुग का निवास हुआ तो जुए में झूठ आ गया, और मदिरा के अंदर कलयुग ने आकर निवास किया तो वहां पर मद आने लग गया। स्त्री और पुरुष के आकर्षण में आकर जब कलयुग बैठ गया तो वो काम वहां पर रहने लग गया, और हिंसा में आकर के कलयुग बैठ गया तो वहां पर रजोगुण बढ़ गया। इस प्रकार से कलयुग ने वहां पर बैठ करके अपना काम चालू कर दिया। ये पांच स्थान उसको दे दिए, और बैल के जो तीनों पैर थे परीक्षित ने अपने हाथ से उनको कायम कर दिए कि देखो अब हमने कलयुग को यहां से भगा दिया है, अब आपकी तपस्या, आपका शौच और आपकी दया, ये तीनों के तीनों सुरक्षित रहेंगी। इस प्रकार से तीनों पैर उनके जोड़ दिए, और फिर वापस वो अपने महल में आ गए। इस प्रकार से उसी परीक्षित की कृपा से भाई अपने लोग यहां कथा कर रहे हैं, यहां यज्ञ कर रहे हैं, इस प्रकार से शौनक जी को समझाया। कहता है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं था परीक्षित, परीक्षित था वो जाकर अपने महल में रहने लग गया, हरदम भगवान श्री कृष्ण की कृपा की तरफ देखा करता था। कारण क्या था कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसको बचाया था। एक बार की बात है, उसको एक ब्राह्मण के कोप से तक्षक ने आकर काट लिया, और जब उसको ये पहले ये मालूम चला कि ब्राह्मण का क्रोध है, शाप है कि तक्षक मुझे काटने वाला है, तो भाई क्या बतावे, कोई आदमी सामने मृत्यु तुम्हारी अमुक दिन मृत्यु होगी ऐसा कोई सुन लेता है तो घबरा जाता है। बताते नहीं है कि तुम्हारी मृत्यु का, वो डॉक्टर भी यदि कह दे साहब आप तो ये रोगी दो दिन में मरने वाले हैं, क्यों लेकिन रोगी को मत कहना क्योंकि ये घबरा जाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित को तो कहा तुम्हारी सात दिन में मृत्यु होने वाली है, पर वो घबराए नहीं, सब कुछ राज्य छोड़ करके गंगा जी के किनारे चले गए, और वहां जाकर उन्होंने संत महात्माओं की सभा में बैठ करके सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत को सुना, और फिर सात दिन तक सुनने के बाद वो अपना शरीर छोड़ करके चले गए। क्या बतावे, जब से भगवान संसार को छोड़कर गए थे तब से कलयुग ने अपना शासन जमाया, और कलयुग का निग्रह करते हुए भी राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए नहीं मारा कि भाई कलयुग का एक बड़ा भारी विचित्र प्रताप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक बड़ी विचित्र महिमा है कि यहाँ पर मानसिक पुण्य तो हो जाता है परंतु मानसिक पाप नहीं होता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, माने जो पाप हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन मन में वृत्ति पाप की हो गई तो उस वृत्ति के होने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो पुण्य हम कर नहीं सकते हैं लेकिन हमारे मन में पुण्य की वृत्ति पैदा हो गई तो उस पुण्य को करने का फल मिल गया। कितनी विचित्र महिमा है इस कलयुग की। हम भाई बहुत बड़ा कोई इतना काम कर नहीं सकते, हमारी शक्ति के बाहर है, लेकिन हमारी इच्छा होगी कि नहीं ऐसा हुए तो बहुत अच्छी बात है, बस उसको उस काम के करने का पुण्यशाली काम करने का फल मिल गया। लेकिन पाप ना, पाप को हमने हमारे शरीर से किया नहीं और पाप की वृत्ति को हम पसंद करते नहीं, फिर भी वह पाप की वृत्ति पैदा होगी तो उसका उसको फल नहीं मिलेगा। कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणी कृतानियत। इस प्रकार से सारग्राही परीक्षित ने ये कलयुग का एक सार भाग देखा था। अब ये कलयुग तो धीर पुरुषों के द्वारा तो भयभीत रहता ही है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को इसीलिए आश्रय दिया कि बेचारे थोड़ा सा नाम ले लेंगे कल्याण हो जाएगा और थोड़ा सा कथा सुन लेंगे जीवों का कल्याण हो जाएगा। ऐसी कलयुग की विशेष महिमा देख करके चहुंजुग चहुंश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाऊ और कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। ये कलयुग का भाव समझ करके उन्होंने उसको शरण दी थी और इसी के कारण से भगवान का नाम लेने से सबका कल्याण हो जाता है। ये आप लोगों ने पूछा वो हमने आपको बता दिया। कहते हैं सूत जी महाराज ज्यों ज्यों हम कहते हैं त्यों त्यों आप कथा को और ढंग से कह रहे हैं। महाराज सूत जी आप खूब लंबे वर्षों तक जिए, आपकी आयु खूब होवे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस बात के लिए हम लालायित हैं वो बात तो आप छिपा ही रहे हैं। आपने कहा कि सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई, बस वही तो आप बताओ सुखदेव जी ने कैसे कथा सुनाई, क्या सुनाई। वो कथा सुनाते सुनाते महाराज हमारा मन पवित्र, कथा सुनते सुनते हमारा मन पवित्र होगा क्योंकि हमारे मन में इस यज्ञ के धुएं की कालिमा जो आकर बैठ गई है। ये देखो खाली समय में कथा सुनते थे और मुख्य समय में वो यज्ञ करते थे, लेकिन जो कथा का थोड़ा सा चस्का लगा सोनकादि ऋषियों को तो उन्होंने कहा कि कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे धूम धूम्रात्मान भवान धूम धूम्रात्म नाम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मा समम मधु। इस धुएं के काम में माने यज्ञ के काम में हमारे हृदय में बहुत धुआं जम गया और अब महाराज आप उस धुएं को दूर करने के लिए क्या करो, भगवान के चरण कमलों से संबंध रखने वाली पावन कथा है उस कथा के जल से आप धो डालो हमारे मन को। कारण कि दुनिया में बहुत सी बातें सब जगह मिलती हैं लेकिन संत महापुरुष का मिलना बहुत दुर्लभ है। असली संतों का दर्शन और उनका मिलना उनका भाषण अत्यंत ही दुर्लभ है। तुल्याम है बहुत सुंदर बात, भागवत में श्लोक सबसे ज्यादा आया है, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष है। अरे संत महात्माओं का जो मिलने का आनंद है जो बड़ा भारी पुण्य है उसको हम लव मात्र भी उनका मिलना, लव मात्र भी उनका दर्शन करना, क्षण मात्र भी उनका संग प्राप्त करना वो किसी स्वर्ग की भी बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग बहुत छोटा है, स्वर्ग तो छोड़ो मुक्ति भी उनके सामने कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरे भोग पदार्थों की तो बात ही क्या है। मानव शरीर में है और संत महात्माओं का संग मिल गया तो इससे बढ़कर और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो महाराज आप जैसे तो संत मिल गए और भगवान की कथा आपको याद है और आप हमको सुना सकते हो, अब महाराज आप तो सुनाओ और हम सुने। आप देखें आप तो सुनाते सुनाते तृप्त नहीं होंगे और हम सुनते सुनते तृप्त नहीं होंगे, दोनों को ही आनंद देने वाली ये कथा है। नांतंग गुणानाम अगुणस्य जगमुह, बड़े बड़े योगी लोग भी भगवान के गुणों का पार नहीं पा सके, वो दिव्याति दिव्य गुण आप हमको सुनाइए। भगवान का विचित्र चरित्र है जिसको सुनने मात्र से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसका अर्थ है कि भगवान का चरित्र शुद्ध है। अरे जब पानी स्वयं स्वच्छ होगा तो जहां हम उसको डालेंगे वो गंदगी को दूर करेगा, स्वयं स्वच्छ होगा तब ना। इस तो भगवान का चरित्र शुद्ध क्यों है, इसलिए शुद्ध है कि वो हमारी अशुद्धि को मिटाने की क्षमता रखता है। तो महाराज परीक्षित को व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज मिले और उनको ज्ञान दिए, वो ज्ञान आप हमको विस्तार के साथ सुनाओ। आख्या ही अनंता चरितोपपन्नम, जरूर उन दोनों की बातों में भगवान की कथा विचित्र विचित्र कथा हुई होगी और सुखदेव जी ने बहुत विचित्र विचित्र अपने अनुभव बताए होंगे, तो परीक्षित ने श्रद्धा से सुना होगा, वो आप हमको विस्तार से सुनाइए। अब देखो ये वक्ता की महिमा कहते हुए ये बात कहे हैं, अब वक्ता क्या बोल रहे हैं। अहो वयम जन्म भृतोद्यः स्म, अहो वै सौनकादि ऋषियों, हमारा तो आज जन्म लेना सार्थक हो गया, हम सूत जाति में पैदा हुए। देखो भागवत के वक्ता सूत जी महाराज हैं और सौनकादि ऋषि हैं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, वो कथा सुन रहे हैं और सूत जी हैं वो कथा कह रहे हैं। तो भागवत के साथ जो संबंध करता है वहां जाति पाति वाली बात ऐसी रही नहीं है। भागवत ऊंची चीज है, उसका भागवत का जो प्रतिपाद्य तत्व वो ऊंचा है। तो सूत जी महाराज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दौष्कुल्य माध्यम विधनोति शीघ्रम, हम एक नीचे कुल में जरूर पैदा हुए लेकिन नीचे कुल की कोई व्याधि हमारे अंदर नहीं, कोई कष्ट नहीं है उसका। आज तो हमें बड़ा गौरव है कि जाति से हम नीचे हैं लेकिन भागवत के कारण से हम कितने ऊंचे हो गए कि आप लोग भी उसको सुनना चाहते हो। तो भागवत ऊंचा है, महत्तमानाम अभिधान योग है, महापुरुषों का जब नाम ले लिया जाए तो उस नाम लेने से कितना बड़प्पन आता है कि आपने हम लोगों से कहा है कि कथा सुनाओ। अब इस प्रकार से जब भगवान की महिमा है, इस महिमा को कौन पार पा सकता है। हम तो इतनी बात कह सकते हैं कि ब्रह्मा आदि को छोड़ करके भी लक्ष्मी जी जिनके चरणों में निवास करती है उन भगवान के विषय में कौन क्या कहे। शेषम पुनात्यन्य तमो मुकुंदात, आप बताओ इस संसार में भगवान के अलावा कौन ऐसा है जो सबको पवित्र कर सकता है। कोनाम लोके भगवत पदार्थ है। इसलिए आपने जो हमसे ये कथा पूछी है मैं क्या बताऊं, मेरे चित्त पर आप लोगों का जो प्रभाव पड़ा है आपकी कृतज्ञता से मैं दब गया हूं। इतना आपने मुझे कृतज्ञ किया है, माने मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिणस तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित है। भगवान की कथा रूपी एक महान आकाश है, उसमें हमारी बुद्धि है एक सामान्य पक्षी के पंखों के समान, उड़ते उड़ते कहां तक जाएगी, जहां तक उसमें शक्ति है वहां तक जाएगी। भगवान की महिमा अपार अनंत है। आपने प्रश्न किया है तो अब हम आपको आगे का प्रसंग सुनाते हैं। तो परीक्षित का एक प्रसंग पूर्वार्ध सुना दिया, अब उत्तरार्ध सुनाते हैं। अब इधर पूर्वार्ध में क्या हुआ था, परीक्षित ने कलयुग को पांच जगह का निवास दे दिया कि तुम पांच जगह रहो। उन्होंने सोने में दे दिया, उन्होंने द्यूत में दे दिया, जुए में स्थान दे दिया, उन्होंने पान में दे दिया, उन्होंने कामना में दे दिया, उन्होंने हिंसा में स्थान दे दिया। एक बार की बात है कि राजा परीक्षित अपने धन को संभाल रहे थे तो अपने खजाने के अंदर गए और खजांची लोग भी वहां थे, तो खजाने के अंदर देखा बड़े बड़े रत्न हैं, हीरे हैं, बड़ा रत्न देखा और उसके अंदर एक बहुत बड़ी पेटी देखी। कहते हैं उस पेटी को भाई खोलो, इस पेटी में क्या है। पेटी को खोला तो फिर पेटी मिली, फिर पेटी मिली तो फिर अंदर पेटी मिली। ऐसे पेटियों के अंदर करते करते अंत में जाकर एक बहुत सुंदर ताज देखा, मुकुट देखा, बड़ा अच्छा सोने का तो बना हुआ, हीरे पन्ने उसमें जड़े हुए। उस मुकुट को उन्होंने उठाया, बहुत सुंदर लगा परीक्षित को, उठा करके उसने उसको अपने सिर पर रख लिया है। सिर पर रख लिया गया हो ये तो राजाधिराजों के लिए बड़ा ही योग्य है। और जो ही मुकुट को अपने सिर पर रखा तो देख मन में आए कि मैं कैसा सुंदर लगता हूं, दर्पण में देखा किया हो ये तो सार्वभौम सम्राट का अलंकार, आज तक तो हमने इसको पहना ही नहीं, हम काय के सार्वभौम हुए। अब वो पहनते ही घमंड पैदा हुआ कि हम तो सार्वभौम सम्राट है, और उसको पहनते ही विचार किया चलो हम शिकार खेलने के लिए। अब अपने हाथ में धनुष ले लिया और वो रथ में बैठ गए, शिकार खेलने के लिए निकल गए। शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर पशुओं का पीछा करते 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 इतने दूर चले गए कि उनके संग साथी तो पीछे रह गए और स्वयं अकेले बहुत दूर चले गए। वो नीरव जंगल, शांत जंगल, निर्जन जंगल, कोई वहां है नहीं। भूख लग आई, प्यास लग आई परीक्षित को, भूखा और प्यासा बेचारा इधर उधर आंख फाड़ फाड़ करके देखे, कोई जलाशय नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं। देखते देखते देखा कि एक वृक्षों का झुरमुट कहीं दिखाई दिया कि यहां शायद कोई आश्रम होगा। ध्यान से सुनना हो राजा परीक्षित की ये कथाएं तो अपने सुनते हैं, पर और थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इन कथाओं में ऐसी ऐसी रहस्य की बातें आ ही जाती है कि जिनसे हमको बड़ी भारी प्रेरणा मिलती है। अब वो मुकुट पहना हुआ वहां पहुंचा आश्रम में। आश्रम में पहुंचा तो एक ऋषि थे, बड़े शांत भाव से बैठे हुए थे, आंखें बंद करके वे अपनी साधना में लगे हुए थे। मिलित लोचनम, ये आंख बंद इसलिए करते हैं कि आंख के द्वारा ये संसार बहुत अंदर जाता है, माने कान से भी जाता है और आंख से भी जाता है और मुंह से जाता है। अब जंगल में अकेले बैठे हैं तो कान से तो जाने का सवाल नहीं, और मुंह से भी संसार जाएगा, बोले किससे, परंतु आंख से तो संसार जा ही सकता है, सामने कई दृश्य दिखता है, इसलिए तो वह आंख बंद करके बैठे हुए थे। माने संसार की वृत्तियां उनमें नहीं थी, संसार की वृत्तियों से ऊपर उठे हुए थे। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम, मन बुद्धि से भी ऊपर उठे हुए थे, सर्व साक्षी के अंदर वे स्थित थे। स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम, निर्विकार ब्रह्म में उनकी स्थिति थी ऋषि की, और जटा उनकी फैली हुई, बड़े शांत और प्रसन्न थे। देखो जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनके चेहरे, उनका बोल चाल, ये सब बता देते हैं कि ये कैसे हैं, क्या है, कहां तक है। उनके नेत्रों से, उनके मुख कमल से, उनके शरीर से ये सब बातें स्वाभाविक ही प्रकट हो जाती है, तो उनसे ऐसा लग रहा था कि निर्विकार ब्रह्म के अंदर ये स्थित है। लेकिन क्या करे, वहां तो वो बहुत प्यासा जो गया था, वहां उसको किसी ने पानी पीने के लिए नहीं कहा, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, चटाई तक नहीं बिछाई, तो बड़ा क्रोध आया। कितना अच्छा ये परीक्षित था, देखो क्या इसकी बुद्धि हुई। तो अभिज्ञातम विवात्मानम मन्यमानस चुकोप है, देखो पहले तो शिकार खेलने की मन में आई, और फिर उसको भूख प्यास से आज पीड़ित होना पड़ा, और ऋषि के आश्रम में जाकर के अवज्ञातमेव अपना उसने अपमान समझा कि ओ मेरा बड़ा भारी अपमान हो गया। अरे संत के दर्शन कर रहे हो और तुम अपना अपमान मान रहे हो, अविज्ञातमेव। क्या कारण था कि वो सोने का मुकुट जो उसके सिर पर बैठा हुआ कलयुग जो नाच रहा था, उसने संत को संत की दृष्टि से पहचानने नहीं दिया, आश्रम को आश्रम की दृष्टि से पहचानने नहीं दिया। और अवज्ञातमिवात्मानम मन्यमानस चुकोप है, एक तो अपने में ये माना कि मेरा अभी यहां अपमान हो गया, और उसके बदले में वो कुपित और हो गया, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसी कभी भी भूख प्यास की कठिनाई भोगी नहीं थी, कठिनाई को भोगा नहीं, इस कारण से वह बहुत कुपित हो गया। ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्राह्मण मत्सरो मन्युरेवच, अब कोई कम दोष पैदा हुए और जो है और क्रोध भी पैदा हो गया और मात्सर्य भी पैदा हो गया। मात्सर्य माने दूसरे का सुख भी बर्दाश्त नहीं, दूसरे की प्रशंसा भी बर्दाश्त नहीं। एक संतों ने बताया कि जैसे मच्छर छोटा सा होता है पर बहुत जहरीला होता है, काटता है तो बीमारियां पैदा कर देता है, ऐसी जो मात्सर्य दोष है जिसे मत्सर भी बोलते हैं, मात्सर्य बोलते हैं, ये मच्छर के समान छोटा है, माने बहुत दूर तक साथ में रहता है, खटकता है और साधना में बड़ी भारी बाधा पैदा कर देता है। वो भी इसके मन में आई कि देखो मैं तो यहां बैठा भी नहीं हूं और ये बड़े शांत होकर के बड़े आनंद के साथ बैठे हैं, इनको तो कोई चिंता ही नहीं। इस प्रकार से जब दूसरे का सुख न सुहावे, दूसरे की उन्नति न सुहावे, संस्कार था कि मात्सर्य दोष है। विचार किया कि वास्तव में ये सही समाधि में है कि नहीं है, ऐसा विचार करके उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया अपने धनुष के कोटी से, माने अग्र भाग से उन्होंने मरा हुआ सांप लिया। कैसे अपराध पर अपराध हो रहा है, वो माने संतों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, पर परीक्षित के मन में आई चलो अब परीक्षा करें। अरे जिसने भगवान की परीक्षा कर ली थी अब उसको जरूरत क्या थी, नाम ही इसका परीक्षित इसलिए हुआ कि वो परितः ईक्षति चारों तरफ देखता था कि गर्भ में रक्षा करने वाला कौन, और वो आज देख रहा है कि असली संत है कि नहीं। मरा हुआ सांप लिया, उठा करके उनके गले में डाल दिया, देखे भाई ये कुछ यहां स्पर्श होगा एकदम घबराएंगे, तब हम कहेंगे कि तुम्हारी समझ, तुम मरे हुए सांप को देख के तो घबरा गए और एक जीता जादा सार्वभौम सम्राट यहां आया उसकी परवाह नहीं किए, ये हम इनको कहेंगे। लेकिन मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, तो भाई जो मिट्टी का ढेला होता है उस पर पानी डालते वो फूटता है, लेकिन पत्थर का जो ढेल पत्थर होता है असली पत्थर, उस पर कितना ही पानी डालो वो फूटता थोड़ा ही। अब वो ऋषि के ऊपर मरे हुआ गला अब मरे हुए सांप को गले में डाल दिया, ऋषि के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो चुपचाप अपने महल की ओर चला गया। और जब वो अपने महल की ओर चला गया और जाकर के जो ही अपना ये मुकुट था, मुकुट उतार करके नीचे यूं रखा और उसका स्पर्श दूर हुआ कि ओ हो मैं राजा, क्यों तो मुझे शिकार में जाना पड़े, क्यों मुझे भूख प्यास भोगनी पड़े, क्यों मुझे आश्रम में जाना पड़े, क्यों मुझे संतों के वहां जाकर ऐसा ऐसा अपमान महसूस करना पड़े, क्यों मेरे को संतों की परीक्षा लेनी पड़े, राम 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 राम, मेरे द्वारा महान अनर्थ हो गया। वो तो जो ही उस मुकुट को उतारा उसके मन में ये वृत्ति पैदा हुई। इधर उस ऋषि का बालक वहीं खेल रहा था, किसी ने जाकर सुनाया कि तू तो यहां आराम से खेल रहा है, तेरे बाप की कितनी दुर्दशा है, कि क्या हुआ कि किसी राजा ने आकर के सुना, परीक्षित नाम का राजा, उसने आकर तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। विहरन बालकोर भकई, जब उस बालक ने अपने बच्चों के साथ में ये बात सुनी तो उसको बड़ा क्रोध आया। वो दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम में आया और पिताजी के गले में मरे हुए सांप को दूर किया और वहां जोर जोर से श्राप देता हुआ कहने लगा कि ओहो देखो तो सही, ये ब्राह्मणों के द्वारपाल है ये राजा लोग, ये ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे दरवान होता है, द्वारपाल होता है, वो मालिक की रक्षा करने के लिए होता है, ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करने के अंदर नियुक्त ये राजा लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लग गए, इन्होंने अपनी मर्यादाओं का नाश कर लिया, तो हम आज श्राप देते हैं ऐसे मर्यादा विहीन राजा के लिए। तो हाथ में जल लिया कौशिक नदी का और लेकर के श्राप दिया कि हमारे पिता के गले में इन्होंने मरा हुआ सांप डाला है, इसके अपराध में हम ये जल लेकर के श्राप देते हैं कि आज के सातवें दिन ये तक्षक नाग आएगा और इसी राजा को, जो कि अपने कुल का एक अंगार ही है, यह तक्षक नाग के द्वारा जल जाएगा, वो उसको खा जाएगा और ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे उसने गर्जना करके और श्राप दे दी। श्राप देने के बाद वो जोर जोर से जब रोने लगा तब राजा, तब वो मुनि थे, उनके आंख खुली। देखो पहला स्कंद है यहां, परीक्षित की भी ये दशा है, अब देखिए आप मुनि की भी क्या दशा है कि मरे हुए गले में मरे हुए सांप को गले में डाला गया। ये मुनि का कहीं आप लक्षण नहीं देखेंगे, भागवत के पहले स्कंद का पात्र उसकी भी ये दशा है। मुनि का बेटा भी रोता हुआ वहां है, मुक्त कंठ और रुरोध है, खूब गड़ा फाड़ फाड़ के रोने लगा। आंख खुली ऋषि की, आंख खुली और बड़े धैर्य से पूछा कि भी क्या बात बेटा, रोते क्यों? कि महाराज इससे बढ़कर मेरे जीवन में और क्या काला दिन आएगा, आप समाधि में स्थित हैं, राजा ने आकर मरा हुआ सांप आपके गले में डाल दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए कितने कष्ट की बात होगी। और क्या, नहीं नहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे भाई हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का काम क्षमा करने का होता है और ये राजा लोग हैं ये हरदम हमारी जैसी साधना में लगे रहने वाले नहीं है, ये राजा लोग हरदम हमारी रक्षा करते हैं तब हम साधना करते हैं, आप ये कहां भूल गए कि हमारी साधना का फल इनको भी मिला करता है। नवई निर्भीर नरदेवम पराख्यम, ये सामान्य राजा दिखते हैं लेकिन राजा होता है वो साक्षात देवता का स्वरूप होता है, इसलिए इसको नरदेव बोलते हैं, मनुष्यों में ये देवता है। यदि ये राजा लोग नहीं हो तो बेटा कितने पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होने लग जाए, चोरों के द्वारा चोरियां होगी, वहां लोगों के धनमाल की रक्षा नहीं होगी, जानमाल की रक्षा नहीं होगी, परस्परम घनंति आपस में लोग लड़ेंगे, राजा लोग की तो बचाते हैं, राजा के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। क्या हो गया? अच्छा बताओ, मरा हुआ सांप हमारे गले में डाल दिया तो हो क्या गया? अरे मरा हुआ सांप डाला था, तुमने तो सांप के द्वारा जिंदे जी उसको सांप के साथ जोड़ दिया, ये तुम्हारा अच्छा काम है? पापम कृतम तद भगवान, तुमने तो ये अच्छा काम नहीं किया भाई, ये ब्राह्मणों के लायक काम नहीं है। तिरस्कृता विप्रलब्धा, ब्राह्मण का चाहे कोई कितना ही तिरस्कार करे, ब्राह्मण को चाहे कोई कितना ही ठग लेवे और ब्राह्मण को चाहे कोई कितनी गालियां निकालने लग जाए, ब्राह्मण का चाहे कोई कितना ही अपमान कर दे, इतना ही नहीं ब्राह्मण को चाहे कोई कितना ही मारे, तो भी ब्राह्मण का ये धर्म है कि नास्य तत् प्रतिकूर्वंती, वे कभी भी अपने जबान से भी अपने मन से भी उसका प्रतिकार नहीं करते कि जाओ तुम्हारा ये होगा, ऐसा श्राप नहीं दिया करते हैं। क्यों? तद भक्ता, ये ब्राह्मण है उस भगवान के भक्त हैं, अतः उनमें ये सामर्थ्य होता है उस अपराध को सहने की। अपराध के बदले में दंड देने की भावना सहसा किनके पैदा होती है कि जो सहनशील नहीं होते। अरे अपराध को भी सहना चाहिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरे पुत्र ने जो गलती की है आप क्षमा कर देना। ये पुत्र तो क्षमा नहीं कर सका राजा को, लेकिन इस पुत्र को हे भगवान आप क्षमा कर देना। तो इस प्रकार से वे भगवान के लिए क्षमा, भगवान से पुत्र के लिए क्षमा मांगने लगे। तो देखो हे सौनकादि ऋषियों, यही संतों की, महापुरुषों की, बड़े आदमियों की विशेषता है कि वे कितना ही उनके सामने कोई प्रतिकूल वातावरण आ जाए, अनुकूल आ जाए, तो न तो व्यथंती, न तो उनके मन में कोई व्यथा होती है और न उनके मन में अनुकूलता से कोई हर्ष होता है। क्यों नहीं होता? अब देखो छोटी सी बात कह दी, यतः आत्मा अगुणाश्रय है। इसलिए नहीं होता कि वे आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और मान अपमान ये गुणों के राज्य में होता है। आत्म तत्व है ये गुणों से ऊपर है, तो गुणों से ऊपर आकर वो रहने लग गए तो अब गुणों की बात वहां तक कैसे पहुंचेगी? जैसे आग कहीं लगती हो और कोई बहुत ऊंचा बैठा हुआ हो पर्वत पर, उसको आग नहीं लगती। इसी प्रकार से जो आत्म तत्व में स्थित है तो ये गुणों में होने वाले क्षोभ वहां तक पहुंचते नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि राजा परीक्षित जब अपने वहां महल में गया, जाकर के जब उसने अपना मुकुट उतारा तो विचार आया कि अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, मैंने बहुत निंदनीय काम किया है। निरपराध ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए? मुझे कोई न कोई दंड मिलना चाहिए, बहुत जल्दी मुझे दंड मिलना चाहिए। देखो परीक्षित की बुद्धि शुद्ध हो गई, परीक्षित की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने कहा कि अब हमको दंड मिलना चाहिए। तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। अरे बड़ा आदमी जब पाप का दंड भोगेगा तो छोटे आदमी इतने में ही सावधान हो जाएंगे। छोटों को पाप के दंड देने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना बड़ा आदमी पाप दंड देकर उनको सावधान कर सकता है। तो हे भगवान मेरे द्वारा आज एक ऋषि का तिरस्कार हो गया, कोई मुझे दंड मिलना चाहिए। आज ही मेरा राज्य जल जाए, आज ही ब्राह्मण के कोप के द्वारा, ब्राह्मण कोई कोप करके मुझे जला दे, मेरे राज्य को जला दे, ताकि ऐसी आगे जाकर और राजा की बुद्धि खराब न होवे। इस प्रकार से वो विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही द्वारपाल ने आकर खबर दी कि महाराज, महाराज एक बहुत विचित्र खबर सुनी है। क्या सुनी है भाई? महाराज क्या बतावे, आप क्षमा करेंगे? बताओ क्या आपने सुना है, बताओगे भी? क्या महाराज हमने आज एक सुना है कि आपको तक्षक नाग 7 दिन में काट लेगा, ऐसा किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया है। अब देखो जब ये बात सुनी तो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि ओहो बड़ा बड़ा भारी ब्राह्मण का अनुग्रह है। लेकिन एक बात अच्छी नहीं की। क्यों? उन्होंने मुझे 7 दिन तक जीवित रखने के लिए क्यों कह दिया? 7 दिन के बाद तुमको तक्षक डसेगा, मुझे तो उसी समय कहना अभी का अभी तक्षक डसेगा। मेरा पाप तो इतना बड़ा है, अपराध इतना बड़ा है, और ऋषि की क्षमा उससे भी बड़ी है कि 7 दिन तक मुझे जीवित रहने के लिए समय दे दिया है। अब क्या करें? सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करेंगे। अपना राज्य उन्होंने छोड़ दिया और विचार करने लगे कि जो तुलसी भगवान के चरणों के अंदर रहती है और आज संपूर्ण संसार में आदर को प्राप्त हुई है, उसी तुलसी के मिश्रण से युक्त भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है वो गंगा के रूप में बह रहा है, वहीं पर जाएंगे। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण है। मरने वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा ज्ञान जिसको हो रहा है वो क्यों नहीं गंगा के किनारे जाएगा? अतएव मुझे गंगा के किनारे चलना चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ करके तत्काल वो गंगा जी के किनारे चला गया, प्रायोपवेश के लिए बैठ गया, प्रायोपवेश करके बैठ गया। प्रायोपवेश माने अन्न और जल का त्याग करके बैठना। अब अन्न और जल का त्याग करके वहां पर बैठ गए। ऋषि मुनियों ने न जाने क्या गुप्त सूत्र लगा रखे थे, सबको पता था कि परीक्षित की मृत्यु बड़ी दिव्य होगी, सब इस ताक में थे। तो जहां परीक्षित बैठे हुए थे उसके आसपास पहले से ही ऋषि मुनि आकर इकट्ठे हो गए। अब पता चला कि परीक्षित ने खाना पीना छोड़कर नदी के किनारे आकर के बैठ करके प्राण त्यागने की सोच ली है। अब ऋषि मुनि सब के सब आ गए, अत्रि जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, च्यवन आ गए, शरद्वान आ गए, अरिष्ट नेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर माने सुखदेव जी के दादाजी आ गए, और बलराम जी और ये परशुराम जी आ गए, मेधातिथि आ गए, देवल आ गए, भारद्वाज आ गए, गौतम आ गए, पिपलाद आ गए, मैत्रेय जी आ गए। मैत्रेय जी स्वयं एक भागवत की परंपरा में है, वो भी आ गए यहाँ, क्योंकि सुखदेव से भागवत सुनने के लिए। और वो आए, अगस्त ऋषि आए, नारद जी आए, और तो और स्वयं भागवत को लिखने वाले वेद व्यास जी भी आ गए कि आज हमको भी भागवत सुननी है। कि महाराज अब आप क्या सुनेंगे कि भागवत है ही ऐसी, इसमें लिखने वाला और कहने वाले का कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें तो भागवत को जो सुनता है सुनकर के बड़ा होता है, सुनने वाले बड़े हैं। तो वेद व्यास जी भी आकर वहां पर बैठ गए। जब इतने इतने ऋषि आ रहे हैं तो वो परीक्षित चारों तरफ देख रहा है कि भाई आप लोग यहां कैसे पधारे हैं, बड़ी कृपा की आपने। राजा ने एक एक ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और बड़ा अनुग्रह माना कि महाराज जिंदगी तो जाने कैसे निकलती है पता नहीं, लेकिन मौत जिसकी अच्छी निकल जाती है बस उसका जीवन सारा सुधर जाता है। कुएं के अंदर 200-400 फुट हमारी डोरी चली गई, लेकिन एक हाथ एक फुट यदि डोरी बाहर है तो वो सारी की सारी डोरी वापिस आ सकती है। इसी प्रकार से जिंदगी चाहे कैसे भी निकले, जिसकी मौत सुधर जाती है वह सारी जिंदगी पवित्र हो जाती है। तो महाराज हमारी मृत्यु को सुधारने के लिए आप आ गए, मौत जिंदगी तो मेरी कैसी खराब निकली है, ब्राह्मणों को मैंने इस प्रकार से मरे हुए सांप को गले में डाल करके अपमानित किया और शिकार खेलने के लिए गया, मेरे से बड़ी भारी गलती हुई, लेकिन मरते समय में आपके दर्शन हो रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानु ग्रहणीय शीला, आप जैसे महान पुरुषों का जो अनुग्रह हमारे राजकुल के ऊपर है, राजाओं पर है, इस बात को लेकर के हमारे मन में और क्या प्रसन्नता होगी। आप ब्राह्मणों के चरणों के धोवन से हमारा सारा राजकुल है वो पवित्र होता आया है। महाराज बड़ी भारी आप ब्राह्मणों की कृपा हुई है, देखो वही ब्राह्मण तो साप दिए हैं और वही ब्राह्मण आकर की कृपा किए हुए हैं। तद्व निर्वेद मूलो द्विदिशा पर रूप है, नहीं नहीं ये ब्राह्मण का साप है वो मुझे केवल मारने के लिए नहीं हुआ है, ब्राह्मण का साप तो मेरे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए हुआ, मेरे पर बड़ी भारी कृपा करने के लिए हुआ है। अब महाराज चाहे कोई तक्षक आवे और चाहे कोई भी आ जाए मार दे, अब मुझे चिंता नहीं है, आप जैसे संत जो हमारे पास हैं, मैं जिन जिन योनियों में भी जाऊं अपने कर्मों के फल से, हे भगवान मैं यही चाहता हूं कि मुझे संत महात्माओं का संग मिले और मेरी कोई इच्छा नहीं है। महत्सु यामयाम उपयामी सृष्टि मैत्रीस्तु सर्वज्ञ नमो द्विजेभ्य, इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी। जो ही परीक्षित इस प्रकार से सबको हाथ जोड़कर अपने मन के भाव व्यक्त किए, त्यों ही देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की कि शाबाश परीक्षित, तुम्हारे द्वारा दुनिया का कितना कल्याण होने वाला है। नवा इदम राजर्षि वर्य, उस समय ऋषियों ने कहा हे राजर्षि, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, राजर्षि शब्द में ही श्रेष्ठता आ जाती है, लेकिन ऋषियों के मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि हे राजर्षि श्रेष्ठ, आपका भगवान श्री कृष्ण में और समानुव्रतेषु और उनका अनुवर्तन करने वाले संतों में इतना विचित्र प्रेम है, हम तो भाई इसीलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए कि तुम अपना शरीर छोड़ोगे तो हम तुम्हारा दर्शन करें। सर्वे वयम तावद यह स्महेद्याम, सब तुम्हारे पास में रहेंगे जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, और तुम भागवत प्रधान हो, भगवान के बहुत ऊंचे भक्त हो, हम तुम्हारी अंतिम स्थिति देखेंगे, तुम किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ते हो।